आप सुन रहे हैं उपन्यास मैला आंचल, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु और इसे स्वर दिया है आपके अपने दीपक यादव ने। मेरीगंज गांव के एकमात्र मालिक, एक छत्र जमींदार तहसीलदार बाबू विश्वनाथ मलिक का खमर देख लो, जिस बड़े चौताल पर एक पंक्ति में बैठकर गांधी जी के श्राद्ध के दिन लोगों ने सर्वघटन भोज खाया, उसी को घेरकर खलिहान बनाया है तहसीलदार साहब ने। 10 बीघे का घेराव है। रामकृपाल सिंह अपनी बची कुची जमीन फसल सहित तहसीलदार के यहाँ सूद रेहन रखकर तीर्थ करने जा रहे हैं, काशी केदार जी जहां तक जा सकें। तहसीलदार साहब ने कहा है,
बाकी रुपया जहां से लिखिएगा मनी ऑर्डर से भेजते रहेंगे।
बाकी खजाना, घर खर्चा, जाड़े का कपड़ा, सकलदीप के प्राच्छित और सत्यनारायण पूजा के लिए खिलावन 200 रुपए मांगने आया। तहसीलदार साहब ने साफ जवाब दे दिया,
हाथ में एक पैसा नहीं है।
घर के पिछवाड़े की जमीन जिसमें धान करीब करीब तैयार हो गया था लिख दी तो 300 रुपए दे दिए। सब मिलाकर 5000 मन से क्या कम होगा धान इस बार। तंत्रिमा छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली, धनुषधारी छत्री टोली और गहलोत छत्री टोली के जन मजदूरों की हाड़ी माघ महीने में ही टंग गई है। खमहार में जितना धान हिस्सा होगा उससे चौगुना तो कर्जा है, सब काट लिया जाएगा और इस बार तो लगता है गांव में गुजर नहीं चलेगा। खिलावन यादव 5 हल चलाते थे, इस साल 1 ही हल चलावेंगे, 1 हल अधारी पर चलेगा। रामकृपाल सिंह ने तो खेती बाड़ी उठा ही दी, बुढ़िया को लेकर तीरथ चले गए। शिवशंकर सिंह 2 हल चलावेंगे। तहसीलदार साहब इस बार ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। पेतार कहता था उसी में सब कुछ होगा, हल, चौंगी, बिधा, कोड़ कमान, कादी गोरा और धन कटनी भी। आदमी की क्या जरूरत, पानी का पंपू आवेगा। इंदर भगवान की खुशामत की जरूरत नहीं, कमला नदी में पंपू लगा दिया, मशीन स्टार्ट कर दिया और हथिया सूंड की तरह सब पानी सोख कर खेत पटा देगा। जब इंदर भगवान को ही नून नींबू चटा रहे हैं तहसीलदार साहब, तो आज भी उनके हुजूर में क्या है। कटिहार में एक जूट मिल और खुला है, 3 जूट मिल। चलो चलो, 2 रुपया रोज मजदूरी मिलता है, गांव में अब क्या रखा है। एक महात्मा जी का भरोसा था, उनको भी मार दिया। बालदेव से पूछो ना, महात्मा जी की जगह पर अब कौन आवेंगे, जमाहिर लाल। मगर महात्मा जी तो एक ही कोपिन पहनते थे। विरची कहता है,
जहां सभी जात भाई का बारहो बरन का ऊंच नीच का पत्ता जूठा हुआ है, उस खमार में बरकत तो उधियाकर होगा। तहसीलदार साहब आज कह रहे थे इस बार सभी को अपने हिस्से में से औकात मुताबिक धान देना होगा, 1 कट्ठा, आध कट्ठा, 1 शेर, आध शेर। महात्मा जी का चन्ना हो रहा है।
महात्मा जी का चन्ना? क्या होगा चन्ना, शराब तो हो गया?
नहीं, रहुआ के गुरु बंसी बाबू ने दिल्ली में आकर 1 करोड़ या 1 लाख, पता नहीं, 1000 याद नहीं, मगर एक मोट रुपया गुरबंसी बाबू ने जमाहिर लाल को जाकर दिया है। महात्मा जी का चन्ना सुनते हैं और भी देंगे। हैं? कौन हल्ला करता है उधर? अरे कौन, रमपिरिया है?
रमपिरिया और रमपिरिया की माँ के गले की आवाज सुनी जाती है। मठ पर झगड़ा हो रहा है, आज लगता है मारपीट ज्यादा हुई है।
रामदास गोसाई आजकल दिन भर गांजा पीता है, एक ना एक दिन वो भी खून करेगा। साला इन्हीं लोगों के पाप से धरती दलमला रही है, भ्रष्ट कर दिया है। अब वो मठ है, लाल बाग मेला का मीना बाजार हो गया है, 10-10 कोस का लुच्चा लफंगा सब आकर जमा होता है।
तहसीलदार साहब आजकल रात में ऊपर के कोठे पर सुमृतदास के साथ कागज पत्तर ठीक करते रहते हैं। किसी किसी दिन सुमृतदास सीढ़ी पर लड़खड़ा कर गिर जाता है। संथालों के घर में चुलाया हुआ महुआ का दारू बड़ा तेज होता है, गंगाई मांझी रोज आधा कंटर दे जाता है। कभी कभी तहसीलदार साहब भी नीचे उतर कर खूब हल्ला करते हैं, कमली की माँ को, कमली को, सीबिया बूढ़ी, सबको गोली से उड़ा देने की धमकी देते हैं। एक रात को तो इतना मात गए तहसीलदार साहब कि कमली की माँ डर से छाती पीटने लगी थी। ऐसी खराब खराब गाली तो जिंदगी में कभी एक बार भी उनके मुंह से नहीं सुनी गई। कमली की बंद किवाड़ के सामने आकर जोर जोर से बकने लगे। कमली दरवाजा खोलकर बाहर आई और बोली,
बाबा मुझे जो सजा देनी हो दो,
मगर माँ को गाली मत दो, उनका क्या कसूर है।
कमली को देखते ही तहसीलदार साहब का नशा उतर गया, वे ऊपर भागे। उस दिन से माँ कमली को एक मिनट भी अकेले नहीं छोड़ती। बिलार को देखकर बच्चे वाले बिल्ली की सतर्क आंखें कैसी तेज हो जाती हैं। कमली की माँ को डर है तहसीलदार साहब किसी दिन कोई कांड करेंगे। एक सप्ताह पहले शराब में एक दवा मिलाकर दिया उन्होंने, कमली को पिला दो एकदम खलास हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किया है, उन पर कैसे विश्वास किया जाए, न जाने कब क्या कर दें। गांव के घर घर में हे भगवान की पुकार मची हुई है। सुबह से शाम तक रात भर धान दबने कर जो मजदूरी मिलती है खलिहान पर रही बाकी मोजर हो जाता है। नाई धोबी और मोची का खन भी नहीं जुड़ेगा इस बार, मिल का भोंपा बचता है रोज। सुनते नहीं, बुला रहा है आओ।
रात के सन्नाटे में ज्योति काका की खांसी बड़ी डरावनी सुनाई पड़ती है।
आए, आए।
दिन में ठीक दोपहर को अमड़ा गाछ पर बैठकर काका किस तरह बोलता है, ठीक उसी तरह खाए खाए
खाएगा, सबको खा जाएगा। पिंगल वरना देवी क्रमश बढ़ी आ रही है, उसके हजारों गण दांत निकाले हैं, जीभ लपलपा रही है, खाएगा खाएगा।
भयार्थ शिशु की तरह सारा गांव कोहरे में दुबका हुआ थर थर कांप रहा है।
खबरदार, होए होए खबरदार।
तहसीलदार साहब ने खलिहान जुगाने के लिए तीन संथालों को और ड्योढ़ी के पहरा के लिए पहाड़िया सिपाहियों को बहाल किया है। एक नाल बंदूक का लाइसेंस फिर मिला है। चलितर कर्माकर जब तक पकड़ाता नहीं है, पैसे वालों को रात में नींद नहीं आएगी। पहरे वालों की बोली भी डरावनी मालूम होती है। आजकल कोठी के जंगल में शाम को ही एक रोशनी जलती है बहुत तेज, फिर रात में और फिर भोर में। बालदेव जी जगे हुए हैं, शाम को पुरानिया से लौटे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। पुरानिया जाने के समय लक्ष्मी ने बावनदास का बस्ता गांधी जी की चिट्ठियों वाला बस्ता देते हुए कहा था। लघुशंका करने के समय पॉकेट से निकालकर गांगुली जी से वो भेंट करने गया था। गांगुली जी ने पूछा था,
बावनदास ने कुछ दिया है आपको।
जी नहीं। बालदेव जी इस जाड़े के मौसम में भी पसीना पसीना हो गए थे, न जाने क्यों गांगुली जी अचानक उदास हो गए। बालदेव अब जान रहे थे इन चिट्ठियों को नहीं दे सकता। इन चिट्ठियों को देखते ही जवाहरलाल नेहरू जी बावनदास को मिनिस्टर बना देंगे, नहीं तो दिल्ली जरूर बुला लेंगे। यो भी आज तक जितने लीडर आए सबों ने बावनदास से ही हंसकर बातें की। उस बार मिनिस्टर साहब आए, बड़े बड़े लीडरों, मारवाड़ियों ने, वकीलों, मुख्तियारों और जमींदारों ने दस्तखत करके दरखास्त दिया, भगवती बाबू सरकारी वकील को कांग्रेस का मेंबर बहाल कर दिया जाए। मगर मिनिस्टर साहब ने बावनदास से पूछा, क्यों बावनदास जी। भगवती बाबू बहाल नहीं हुए, आखिर बावन की ही बात रही। भगवती बाबू ने 42 में सुराजिया को फांसी पर झुलाने के लिए खूब बहस किया था, और ये चिट्ठियां नहीं, वो हरगिज नहीं देगा। लक्ष्मी को न जाने क्या हो गया है, जिस दिन से बस्ता मिला दोनों बखत सत्संग के समय सिर झुलाकर सामने रखती है। रोज चंदन और फूल चढ़ाती थी इस पर, कभी कभी चिट्ठियों को खोलकर पढ़ती और रोती। पुरानिया से लौटने पर कुशल मंगल पूछना तो दूर, पूछ बैठी, गांगुली जी को दे दिया ना।
हाँ हाँ दे दिया, इतना ना प्रतीत था तो मेरे हाथ में दिया ही क्यों था।
बालदेव जी को नींद नहीं आ रही है, बैलगाड़ी पर पुआल के नीचे बस्ता छिपा कर रख दिया है, धुनी तो धू धू कर जल रही है। बालदेव जी उठकर बाहर जाते हैं।
ओए खबरदार,
पहरू चिल्लाता है। बालदेव जी धुनी के पास बैठकर लकड़ियों को जरा इधर उधर करते हैं, फिर कनकी से लक्ष्मी के बिछावन की ओर देखते हैं, धीरे से बस्ता निकालकर खोलते हैं। उनका सारा देह सिहर रहा है, जीभ सूख कर काट हो गई है, मुंह में थूक नहीं है, धुनी की आग लहलहा उठी है, लकड़ियां चिट चिट बोलती हैं। बालदेव ने एक चिट्ठी निकाली,
दुहाई गांधी बाबा, बाबा रे।
लक्ष्मी बिछावन पर से ही झपटती है,
गुसाई साहेब, छी छी ये क्या कर रहे हैं।
सतगुरु हो क्षमा करो, बालदेव पापी हत्यारा।
धुनी की आग लक्ष्मी के कपड़ों में लग जाती है।
लगने दो आग, मुट्ठी खोलिए, बस्ता दीजिए बालदेव जी, मैं जलकर मर जाऊंगी मगर।
बालदेव जी की कसी हुई मुट्ठी खुल जाती है, लक्ष्मी बस्ते को कलेजे से चिपकाकर खड़ी होती है, कमर से लिपटा हुआ कपड़ा खुद ब खुद गिर पड़ता है। बालदेव जी कमंडल से पानी लेकर छींटते हैं।
हे भगवान,
सतगुरु हो, जय गांधी जी, बाबा जय पावन दास जी।
लक्ष्मी रो रही है, वस्त्रहीन खड़ी लक्ष्मी रो रही है। लक्ष्मी के हाथ पांव जल गए हैं, बड़े बड़े फफोले निकल आए हैं। बालदेव जी अपनी मसहरी में आकर छिप जाते हैं। लेटकर सोचते हैं, नहीं अब यहां रहना अच्छा नहीं, वो किस मुंह से यहां रहेगा। लक्ष्मी की ओर अब वो निगाह उठाकर कभी देख नहीं सकेगा, वो पुरैनिया जाएगा, वहीं से चंदनपट्टी चला जाएगा। वो अब अपने गांव में रहेगा, अपने समाज में, अपनी जाति में रहेगा। जाति बहुत बड़ी चीज है। जाति की बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी जाति की पार्टी में है, ये तो राजनीति है। लक्ष्मी क्या समझेगी, काशी जी का ब्रह्मचारी तो लगता है अब यहीं खुट्टा गाड़ेगा। ठीक है, नहीं लक्ष्मी पर जाते जाते अकलंग लगाकर नहीं जाएगा वो।
गुसाई साहब उठिए, सत्संग का समय हो गया।
लक्ष्मी कराते हुए उठती है, सारा देह जल गया है। रोज की तरह लक्ष्मी उठती है, उठकर बालदेव जी के बिछावन के पास आती है, मसहरी हटाकर बालदेव जी के अंगूठों में आंखें लगाती है।
साहेब बंदगी,
बालदेव जी रोते हैं सिसकियां लेकर।
लक्ष्मी उठिए गुसाई साहब।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।